ہمارا سارا جیون آپ نے خوشحال کر دیا.
ہوم شانتی. کیونکہ کچھ نے اپنا پرتیجا لکھ کر دی ہے اور کچھ نے شاید پرتیجا نہیں لکھ کر دی ہے, تو یہ دو بھائیوں نے نہیں لکھ کر دی تھی تو یہاں ہم کو تھما دیے. باقی آپ سب نے لکھ کر دی ہوگی یا نہیں یہ آپ سمجھتے ہیں, اور اگر کوئی بڑوں کی کہنا مانتے ہیں تو اس میں پھل اور بل ضرور بھرا ہوا ہوتا ہے, ایسا سمجھنا ہے. اور ہم کچھ بھی چھپائیں کس سے؟ بابا کہتے ہیں کسی پرانی سے تو آپ چھپا سکتے ہو, لیکن بھگوان سے تھوڑی چھپا سکتے ہیں. داتا تو سب کچھ ایک طرف کہتا ہے میں انتریامی نہیں ہوں, اور دوسری طرف یہ بھی کہتا ہے کہ مجھے سب کچھ بتاؤ. اور کئی بار بابا سے کئی کہہ بھی دیتے تھے, بابا آپ کہتے ہو میں انتریامی نہیں ہوں, پھر بھی آپ ہر بات کہتے ہو میں بچوں کی جانتا ہوں. تو جانتے ہو تو پھر آپ ہم سے کیوں پوچھتے ہو؟ تو بابا نے یہی بات کہی تھی کہ بچے دیہ ابھیمان کے کارن کوئی بھی بھول بچوں سے ہوتی ہے, اور دیہ ابھیمان کو سماپت کرنے کا اپائے ہی ہے سوئم کی کوئی بھی بات سوئم ہی بتائیں, اس سے آدھا ان کا ویسے ہی معاف ہو جائے گا, کیونکہ انہوں نے اس بات کو سویکار کیا ہے. تو سویکار کر لینا کوئی کم بات نہیں ہوتی ہے, یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے. اس لیے بابا جانتے ہوئے بھی یہی کہتا ہے میں نہیں جانتا, میں ایک ایک ہردے کو بیٹھ کر تھوڑی ریڈ کروں گا, تمہارے ہردے میں کیا چلتا ہے یہ تم جانو, اپنی بات تم جانو اور تم ہی مجھے بتا سکتے. اور میں نے بابا کا یہ آپ کو بتایا بھی تھا کہ ٹھیک ہے جب ہم لکھتے ہیں تو من کی بات کو ہم لپی بد کرتے ہیں کاغذ کے اوپر, لیکن کاغذ پر لپی بد کرنے میں ہمارے کئی بار شبد ایسے ہیں کہ کوئی پورا پڑھ نہ لے, یا نام لکھنے میں تھوڑا ایسا کرتے ہیں جو نام کا ستھان کا پورا پتہ نہ لگ پائے. کوئی بات نہیں, لکھنے بھی وہ لکھ دیتے ہیں, کہتے ہیں لکھے موسیٰ پڑھے خدا, ہر ایک نہیں پڑھ سکتا ہے. لکھنا آتا ہے ان کو, ایسا نہیں آتا ہے, سب آتا ہے, لیکن کسی یکتی سے ایسا لکھ بھی دیتے ہیں. چلو جو بھی لکھ دیا, بابا کے پاس تو من میں جو چل رہا ہے وہ پہنچ گیا, لکھت آپ کو ساکار میں رہے گی. بابا کو یہاں تک کہا گیا کہ بابا کچھ رائے لینی ہو تو کیا کرے, بابا نے کہا تم لکھ دو. اور مجھے یاد ہے ساکار بابا کے ہوتے پتر آتے تھے, تو کئی بار ایشو دیدی ہم کو پاس بٹھا لیتی تھی کہ دیکھتے جاؤ جو پتر بابا کے لیے ہیں وہ الگ کر دو, اور جو پتر یہ لکھا ہے باپ دادا تھرو دادی جی وہ پتر الگ کر دو. تو جو باپ دادا تھرو دادی جی ہیں وہ پتر کھولے جاتے تھے بابا کے اویکت ہونے کے بعد کی میں بات سنا رہی ہوں, باپ دادا تھرو دادی جی وہ پتر کھولے جاتے تھے, پڑھے جاتے تھے, نشان لگتے تھے کہ یہ آنسر کوئی ہم سے چاہتے, یا کئی ایسے پتر ہوتے تھے جو کوئی پرشن ہے جو انہیں پوچھنا ہے, اور کئی پتر ہوتے تھے کیول لکھا جاتا تھا باپ دادا, तो बाप दादा का पत्र बंद का बंद ही फाड़ दिया जाता था कि ये तो बाप दादा को लिखा, इसका आंसर बाप दादा देगा, और कैच करने वाला कैच करता रहे, और इतनी तो समर्थ नहीं है कि बाबा के बातों को हर बच्चा कैच कर सके, इतनी बुद्धि की लाइन क्लियर भी तो चाहिए। इसलिए माध्यम जब प्रमुख निमित्त बाबा ने बनाया तो निमित्त माध्यम को देते समय बाबा को सामने रखें, आंसर बाबा देगा लेकिन माध्यम के निमित्त देगा, और उस समय माध्यम भी निमित्त बन जो बाबा के महावाक्य हैं वो ही आंसर देता है। क्योंकि मैं देखती हूँ इस समय जो समर्पण भाई हमारे आए तो समर्पण भी चार प्रकार के जो मुझे आभास हुआ, एक वो समर्पित आए जो संपूर्ण रूपेण सेवा केंद्र में ही रहते हैं, कोई लौकिक में नौकरी धंधा कुछ नहीं, लेकिन सेवा केंद्र ने सेवाओं अर्थ आवश्यकता अनुसार उनको सेवा केंद्र में रखा और वो सेवा केंद्र में सेवाएं दे रहे हैं। एक वो हैं जो अच्छी जॉब करते हैं, कहीं भी नौकरी करते हैं, लेकिन उनको कोई बंधन नहीं है, किसी प्रकार की जिम्मेवारियां उनके ऊपर नहीं है, और वो ये समझते हैं कि हम अपनी सेवाएं इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में परिपूर्ण रूपेण दे सकते हैं, तो क्यों नहीं धंधा भी करें, धन से तन से मन से सर्व प्रकार से अगर हमारा सहयोग इस यज्ञ में हो तो हम हर प्रकार का सहयोग दें। ऐसे भी दूसरी प्रकार के बाबा के बच्चे हैं जो समर्पण की लिस्ट में आए हुए हैं, और तीसरी प्रकार के वो बच्चे हैं जो रहते अपना कमरा लिए हुए हैं या अपने घर में हैं, परंतु सेवा केंद्र से भोजन नाश्ता आदि स्वीकार करते हैं, और जैसे दादी जी ने उनको बनाकर दिया हुआ है, क्या यज्ञ में रखना है क्या स्वयं के लिए रखना है उस अनुसार वो अपना जीवन चलाते हैं, वो भी समर्पित की लिस्ट में माने गए हैं जो यहाँ आए हैं, और चौथे वो भी आए हैं जो यज्ञ में पूर्ण सेवाएं जब आवश्यकता उसी समय वो सेवा पर हाजिर हैं, लेकिन रहते वो अपने घर में हैं, कोई सर्विस करके सब धन यज्ञ में दें या ऐसा कुछ नहीं, लेकिन सेवाओं में आज्ञाकारी हैं, सुयोग्य हैं, और परिवारों में रहते हुए सेवा कर रहे हैं, जैसे उनमें ट्रस्टी क्वालिटी है, सरेंडर क्वालिटी है, सब कुछ बाबा के आगे क्लियर है, एक ऐसे भी सरेंडर हैं। अब मेजॉरिटी कौन से सरेंडर यहाँ आए हुए हैं मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मैंने चार प्रकार के समर्पित भाइयों को देखा, परंतु मुझे सर्वप्रथम उन समर्पित भाइयों के लिए विचार चल रहा था जिन्होंने अपनी छोटी आयु में, क्योंकि कुछ युवा आए हैं कुछ आज हमें बुजुर्ग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब वो आए थे तो बुजुर्ग नहीं आए थे, कोई 20 वर्ष का कोई 25 वर्ष का होगा, और यहाँ आने पर 30 वर्ष हो गए, 25 वर्ष के आए थे तो जरूर है 55 वर्ष के हो गए, और हो सकता है कोई 30-35 वर्ष का भी आया और आए 30 वर्ष हो गए तो 65 साल के भी वो हो गए, ऐसे भी समर्पित बाबा के बच्चे हैं। लेकिन ये वो बच्चे सब समझते हैं कि जिस समय हम घर में थे और हमारे अंदर ये भावना आई कि हम बाबा की सेवा पर लग जाएं, उस समय हमारी मनोस्थिति, हमारी लगन, हमारी ईश्वर के प्रति आस्था, हमारी सर्व समर्पण करने की भावना, बहनों के प्रति स्नेह, परिवार के प्रति सत्कार, ईश्वरीय यज्ञ के प्रति डेडिकेशन, ये हमारे मन में कितना था। लेकिन जब हम आ गए, आने के कुछ समय के बाद हमारी मनोस्थिति में, हमारे त्याग में, हमारी सेवाओं में, हमारे डेडिकेशन उस कार्य के लिए लग जाना है, उसके प्रति जो हमारी भावनाएं थी उसमें कुछ अंतर आया। और वो अंतर धीरे धीरे, अंतर महसूस नहीं हुआ, ऐसा लगा जो चल रहा है और जो हम कर रहे हैं यही ठीक है। और बाबा ने हम बच्चों को ये बात कही हुई है कि बच्चे, किसी भी अंतर को महसूस करना है तो मंत्र की स्मृति ज्यादा से ज्यादा आ जाए। जो बाबा ने हमें योग का मंत्र दिया है, अगर वो मंत्र हमारा ज्यादा से ज्यादा मनोस्थिति को परिपूरित करता है और ईश्वरीय यज्ञ में रहते हुए बाबा के प्रति अगाध स्नेह हमारे हृदय में बढ़ता चला जाता है, तो अगर कहीं कोई कमी कमजोरी आने लगती है तो फौरन हम सचेत हो जाते हैं, ये ठीक नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। आज मैंने कुछ अनुभव को देखा भी, बहुत थोड़े, जिसमें ऐसा प्रतीत हुआ कि कुछ समय से कुछ ऐसी अलबेलाई कहो, दृष्टि की कहो, खाने पीने की कहो, स्वभाव संस्कार की कहो, जीवन में आवेश या जोश की बात कहो, वो किसी परिस्थिति के कारण या किसी प्राणी के कारण या किसी ऐसे संघ के कारण वो संस्कार हम में आए, और उन संस्कारों को हमने कुछ लंबे समय तक चलाते चले गए, जिस कारण वो संस्कार हमारे स्वरूप में समाता चला गया। हम डेडिकेटेड जरूर कहलाए, समर्पित जरूर कहलाए, लेकिन समर्पण भावनाओं में कमी आने के कारण हम अपने जीवन से स्वयं न संतुष्ट रहे, न हम सबको संतुष्ट कर पाए, जिस कारण से कभी कभी चेहरे पर जो रौनक होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए, प्रभु ने हमें स्वीकार किया ऐसा भाग्य की एक चमक दिखाई देनी चाहिए, वो चमक में कमी आने लगी। क्योंकि आप सब समझ सकते हो कि ईश्वर ने दो शब्द कहे परसों की वाणी में, एक घर के बच्चे हैं, एक बाहर के बच्चे हैं। अब किसी ने हमसे, जब मैं मुरली वहां ज्ञान स्रोत में पढ़ रही थी, तो पूछा घर के बच्चे और बाहर के बच्चों का बाबा ने क्या नाम लिया, क्यों लिया। आप सब ने भी ये मुरली सुनी और आप सब समझो सियाने बैठे हैं, मालूम है कि जो बाबा के घर में आ गए, यज्ञ में आ गए, वो ब्राह्मण बने जो न केवल अपनी आहुति डालते हैं लेकिन अनेकों की आहुति डलवाने वाले वो ब्राह्मण बन गए। बाबा के यज्ञ से उनकी परवरिश या पालना होती है, बाबा के यज्ञ में उनका प्रतिपल और प्रतिश्वास जाता है, उनका कोई लौकिक वालों से कोई ऐसा रिश्ता नाता नहीं है। आप समझ सकते हैं कि उनको प्राप्ति कितनी ज्यादा हो सकती है। जिन दादियों ने ना अपना परिवार देखा, वो समय था जब यज्ञ की शुरुआत थी, उस समय कुछ आत्माओं की बलिदान और कुर्बानी की आवश्यकता थी। हमारा देश जब स्वतंत्र होना था, गुलाम था, तो बहुतों ने अपने जान की बाजी भी लगा दी। जैसे हम कई बार भगत सिंह की कहानियां या उनके गीत सुनते हैं कि माँ का एक लौता जवान पुत्र था और माँ नहीं चाहती कि मेरा बेटा फांसी के तख्ते पर चढ़ जाए, लेकिन बेटे ने यही गीत गाया कि माँ ये फांसी नहीं है, ये तो मैं जयमाला भरने के लिए जा रहा हूं, तू फांसी कैसे समझती। तो उसने उसे वो शादी की जयमाला समझकर उस फांसी को भी स्वीकार कर लिया, क्योंकि देश की आजादी के लिए कुछ को कुर्बानी देनी होगी, कुछ को अपने सुख सुविधाओं का त्याग करना होगा, तभी इसकी शुरुआत हो सकती। और शुरुआत उन माताओं ने, उन भाइयों ने, उन दादियों ने, आज जिनको हम दादियां कहते हैं, उन्होंने की, जब उन्होंने लोक लाज कुल मर्यादा कुछ नहीं देखा, एक भगवान की आवाज सुने कि नई सृष्टि लाने के लिए स्वयं भगवान धरा पर आ गया है, और वो हम बच्चों को नया संसार बनाने के लिए हम बच्चों का सहयोग चाहता है। एक बहुत सुंदर गीत है, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे जोड़ी, द्वापर से लेकर कलयुग अंत तक हम भगवान के द्वार खड़े रहे, क्योंकि जितनी भक्ति सच्चुक त्रेता युग वाले बच्चों ने की, उतनी भक्ति किसी अन्य ने नहीं की। और जब भी हम प्रभु द्वार पर गए, कुछ ना कुछ मांगनी, कुछ ना कुछ आशा और इच्छाएं हमने भगवान के आगे प्रकट की, और भगवान ने हमारी झोली में ये सब कुछ डाला। और यही बाबा ने कहा कि मेरे वही देवी देवता बच्चे जो अपने देव स्वरूप को विस्मित होकर रावण के वशीभूत हो गए, वो जब भक्त बनते हैं तो उनकी अल्पकाल की मनोइच्छा भी मैं पूरी करता हूँ, और जो मेरे बच्चे जिनको बाद में भक्त भक्ति में अपना इष्ट मानते रहे, मेरे बच्चे उनका कुछ नहीं कर सकते थे, तो मैं यही बात सुना रही थी कि वो बच्चे फिर जो देव थे लेकिन देव नहीं रहे, उनके भी भक्त उन्हें अपना इष्ट समझकर पूजते रहे और अपनी झोली में कुछ ना कुछ उनसे वरदान मांगते रहे, परंतु बाबा को मालूम है कि वो मेरे बच्चे कुछ नहीं कर सकते, उनकी भावना केवल भगवान के प्रति है, कि उनको वो इष्ट समझ रहे हैं, उनकी भी बाबा ने अल्पकाल की कामना को पूर्ण किया। लेकिन आज इस पुरुषोत्तम संगम युग पर स्वयं भगवान कहता है, मैं तेरे द्वार आकर खड़ा हुआ हूं। किस लिए खड़ा हूं? क्यों भक्त, तू जो भक्त था अब मैं तेरे द्वार आया हूं, तू मेरी झोली में कुछ डाल दे। द्वार खड़ा हूं तेरे भक्त, कुछ मेरी झोली में अब तू डाल दे। जब तू मेरे द्वार आता था तो मैंने तेरी झोली में कुछ ना कुछ डाला, जब मैं तेरे द्वार आया हूं तो भगत भर दे रे झोली, अब तो मेरी झोली भी भर दे। और किससे भरते, ये हम सबको मालूम है कि हमारे पास है ही क्या, कख पन, रोगी तन, अशांत मन, न सुख देने वाला धन, यही सब कुछ तो हमारे पास है। लेकिन दाता वो भी कहता है, कोई बात नहीं, तो मेरी झोली में यही पुराना कखपन दे दे, और फिर साथ ही आश्वासन देता है, तो कखपन देगा मैं लखपन उसके बदले में तुझे वापस रिटर्न करके दूंगा, तो दे तो सही। गली गली में कई बार आते हैं, पुराने कपड़े दे दो, स्टील के बर्तन ले लो, पुराने कंबल दे दो, नए कंबल ले लो, और भगवान आया है कखपन जीवन का दे दो, और नया तन सुखद मन आनंद देने वाला धन सर्व प्राप्तियों को प्राप्त कर लो, यही समय है पुराना देकर नया लेने का। लेकिन बहुत सबसे पहली बड़ी जो जिम्मेवारी है वो उनके ऊपर है जो सेवा केंद्र में रहते हैं। सेवा केंद्र में रहने वाला अगर एक का पदम गुना कमाई करता है तो एक कमी का पदम गुना घाटा भी खाता है, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेवारी है उसके ऊपर। वो ईश्वर के उस यज्ञ का रक्षक है जिस यज्ञ में सर्वात्माओं ने जीवन दान देना है, जिस यज्ञ से प्राणी मात्र ने प्रभु प्राप्ति का सन्मार्ग देखकर उस मंजिल को पाना है। ये वो स्थल है और उसके उस स्थल पर रहने वाले उसके वातावरण को बनाए रखने के लिए कितनी बड़ी जिम्मेवारी का ताज अपने सिर पर लेते हैं। अगर उस जिम्मेवारी वाले ये कह दें कि हमको क्रोध आता है, और कई बार क्रोध ही नहीं दृष्टि वृत्ति की भी अशुद्धि आ जाती है, और मैं ये कहूंगी प्राप्ति बहुत है लेकिन अप्राप्ति भी बहुत है, क्योंकि जब किसी से आप दूर रहते हैं तो आपको उनके प्रति श्रद्धा आस्था विश्वास ज्यादा रहेगा, क्योंकि आपने उनका वही स्वरूप देखा है जो बाबा के ज्ञान का स्वरूप होना चाहिए। लेकिन जब हम बिल्कुल क्लोज आ जाते हैं, हम इस बात को भूल जाते हैं कि कोई भी संपन्न और संपूर्ण बना हुआ यहां नहीं है। हर एक पुरुषार्थ के अनुसार उतना उतना है। अगर हम सब संपूर्ण संपन्न बन चुके होते तो हम यहां से जा चुके होते। हम यहां हैं, इसका मतलब अभी हम में कई कमियां और कमजोरियां हैं जिसे निकालने के लिए सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पुरुषार्थी। लेकिन कभी कभी जब हम परिवार में अंदर रह जाते हैं और छोटी छोटी बातों पे संपर्क और संग में आते हैं तो जो हमारी आस्था और श्रद्धा होती है कई बार उसमें परिवर्तन आना शुरू हो जाता है, क्योंकि हम ये विस्मित हो जाते हैं कि सब पुरुषार्थी हम यहां आए हैं अपनी सेवाएं देकर अपने जीवन को धन्य करने के लिए, लक्ष्य और लक्ष्य दाता के सिवाय कहीं हमारी आंख ना डूब जाए। अगर कहीं आंख अटैचमेंट में डूबी, मोह ममता में डूबी तो भी गिर जाएंगे, कमी और कमजोरी में डूबी तो भी गिर जाएंगे, कहीं फंस जाएंगे और कहीं नफरत आ जाएगी, ये हमारी अवस्थाओं पर प्रभाव पड़ेगा। ये बहुत बड़ा स्टेप होता है ईश्वर के यज्ञ में समर्पण हो जाना, ये सरल काम नहीं है। कई समझते हैं चलो रहना तो है ही, वहां रहे या यहां रहे काम तो करना ही है, यज्ञ में भी रह के काम कर लेंगे। काम नहीं है, यहां बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। अनेकों के जिए दान का स्थल है जहां ने अनेकों ने आकर अपने मनोकामनाओं को पूर्ण करके जाना है, उसके वातावरण का निर्माण करने वाली वहां की वो प्रतिमाएं हैं जो वहां रहती, चाहे वो भाई है या बहने। मंदिर तो हनुमान जी के, राम जी के, गणेश जी के कई जगहों पर होते हैं, लेकिन हर मंदिर में रश नहीं होता है। कोई मंदिर में कहते हैं बहुत ये मूर्ति बहुत प्राचीन है और मनोकामना सब पूर्ण करने वाली है, उस मंदिर में लाइनें लगी हुई हैं, भक्त जनों को श्रद्धा के पुष्प चढ़ाने का टाइम नहीं मिलता है। और दूसरी जगह बड़े सुंदर हनुमान जी बने हुए हैं, बहुत सुंदर श्री लक्ष्मी श्री नारायण है, कभी कभार कोई मंदिर में जाता है, कोई जाता ही नहीं। वास्तव में तो जड़ स्थल है, लेकिन भगवान के तो चेतन, बाबा ने कहा है ये धरती के वो तीर्थ स्थल हैं, धरती में वो तीर्थ स्थल हैं जहां आकाश के तारे धरती पर रहते हैं। आप सोचिए सेवा केंद्र में रहने वाले की कितनी बड़ी जिम्मेवारी हो जाती है, क्योंकि घर में रहने पर एक पारिवारिक भावना आ जाती है और हम आज तक परिवारों में ही रहे लेकिन लौकिक जीवन में रहे, सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक हमने लौकिक जीवन जिया, परंतु जब सत्य प्रभु के घर इस समय हम आते हैं तो ये घर है लेकिन यहाँ का जीवन लौकिक जीवन नहीं है, ये जीवन अलौकिक है, न्यारा है और निराला है। घर में रहते हुए हो सकता है कभी कोई पूर्ण वस्त्रों में भी ना हो, पूर्ण ढका हुआ नहीं समझते, घर में ही तो हैं, हमारी दृष्टि का खराब होने के बड़े चांसेस हैं। आपस में दो के रहने पर मन का टकराव हो जाने के कारण, ऊपर नीचे बात सुनने के कारण मेरी मन की स्थिति पर असर होना बड़ा सरल है, मुश्किल नहीं है। दुनिया में समझते तो संसारिक लोग हैं, इनको ज्ञान नहीं है, इसलिए यहाँ आपस में किसी भी बात का ये झंझट करते हैं, ये आपसी मतभेद होता है। लेकिन अलौकिक जीवन में अगर थोड़ा सा मतभेद मनोस्थिति में ऊंचाई नीचाई कहीं बोल चाल में फर्क देखते हैं, ये क्योंकि डेडिकेटेड अगर कोई आत्मा नई हुई है तो उसको बड़ा असर आ जाता है। और जो पुराने हो जाते हैं वो समझते हैं जैसे ये करते हैं ऐसे हम भी करते हैं, सब चलता है, सब चलता है, और वो चलता करते हुए हम चलते चले जाते हैं, लेकिन ना हम स्वयं को संतुष्ट कर पाते हैं, ना हम बाबा को संतुष्ट कर पाते हैं, ना परिवार को संतुष्ट कर पाते हैं। पहले हम संतुष्ट करते थे तभी सब चाहते थे अब यहीं आ जाओ, घर किस लिए जाते हो, यही तो आपका घर है, लेकिन जब घर में आए तो वो जो संस्कार है जिसको बाबा कहते हैं बीमारी फूटेगी ख्याल रखना, ये ना समझना हम बहुत तंदुरुस्त हैं, जन्म जन्म के संस्कार हैं, भरे हुए हैं, खत्म नहीं हो गए, जल नहीं गए, क्योंकि सेवाओं में इस कदर व्यस्त हो जाते हैं, समझते हमने सेवाओं के लिए जीवन दिया है, बिल्कुल राइट है, लेकिन प्रतिपल सेवा करते हुए ये संकल्प दृढ़ रहे कि ये सेवा नहीं, ये ईश्वर ने मेरे समय और स्वास्थ्यों को सफल करने का स्वअवसर प्रदान किया है। हर पल बाबा के गुण गाते हुए बाबा को नैनों में बसाते हुए हम उस सेवा में लगे हुए हैं। ये प्राणी कैसा है, ये मनुष्य का व्यवहार कैसा है, इसकी सेवा करनी चाहिए या इसकी नहीं करनी चाहिए, ये करनी चाहिए ये वो करनी चाहिए, मेरे आगे कोई चॉइस नहीं है क्योंकि सेवा माना ही सेवा है। तो मुझे ऐसा आता है कि सेवा केंद्र में रहने वाले जो रहे पड़े हैं सेवा केंद्र में, उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारियां हैं, क्योंकि बाहर अगर आपकी किसी के ऊपर दृष्टि जाएगी तो आपको लगेगा ठीक नहीं है, बाबा ने मना किया है, लेकिन सेवा केंद्र में रहते हुए अगर दृष्टि चली जाएगी तो आप कई बार उसको चला लेंगे, देवी बहन या देवी भाई ही तो है, कौन बाबा हम बच्चों को कहते हैं रहम दिल बनो, लेकिन रहम दिल का मतलब क्या है, बड़ा मजबूत हृदय, रहम दिल का मतलब ये नहीं कि ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं को तोड़कर हम रहम दिल बन जाएं। ऐसा रहम दिल बनने वाला रहम में ही धोखा खा जाता है। बहुत विचारनीय ये बातें हैं। हम देखें, हमें क्रोध आता है, क्योंकि हम क्रोध को जीत कर तो नहीं आए, घर छोड़ आए, परिवार छोड़ आए, अपना धोरा धंधी छोड़ आए, लेकिन संस्कारों का पोटला तो लेकर आए हुए हैं। वो थोड़ी छोड़ कर आए, कौन छोड़ कर आया है, वो तो हम यही ले आए। और वो जब खुलने लगता है तब हम कई बार स्वयं से भी परेशान होते हैं कि ये संस्कार मेरे में कहां से आ गए, पहले तो थे नहीं। बाबा कहते हैं थे नहीं आएंगे हैं, उन्हें भस्म करना है। तुम उन्हें प्रकट होने से पहले ही भस्म कर लेते तो प्रकट कर विकृत कर कोई विकर्म का खाता ना बनता, लेकिन डीले हो जाने के कारण कई बार विकर्मी खाते बन जाते। इस चीज का बड़ा ध्यान देना है। मैंने अधिकतर देखा योग के विषय में, बहुत तो नहीं यही लिखा, अब हम योग पर ध्यान देंगे, अमृत वेले पर ध्यान देंगे। मुझे आता है समर्पण वालों की सबसे बड़ी, जब शिव बाबा ने समर्पण कराया अपनी बहनों को, आप सबको मालूम है कि शुरू में ज्ञान नहीं था, किसी प्रकार की सेवाओं का क्षेत्र या स्कोप नहीं था, लेकिन योग का तांता बना रहे ताकि वो जो देह अभिमान के संस्कार हैं पहले वो तो स्वाहा हो। और बाबा ने बच्चों की योग युक्त स्थिति इस कदर बना दी कि माँ बेटी होने के बावजूद एक स्थल पर रहते थे, लेकिन माँ को ये आभास नहीं रहा कि मेरी बेटी है, और बेटी को कभी ये आभास नहीं आता था मेरी माँ है। पति पत्नी होने पर भी पति को ये आभास नहीं, ये मेरी पत्नी है, और पत्नी को ये कभी आभास नहीं आता था ये मेरा पति है। इस कदर बाबा ने देही अभिमानी स्थिति का अभ्यास कराया। चलते फिरते उठते बैठते बच्चे ड्रिल करो, मैं आत्मा हूं, मैं चमकता हुआ हीरा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं। ऐसा नहीं खाली मैं आत्मा हूं। एक बार हमसे बाबा ने पूछा, बच्ची तुम कौन हो, तो मैंने कहा बाबा आत्मा हूं। बाबा ने कहा तुम आत्मा हो, तो बाबा ने कहा तुम शांत स्वरूप आत्मा हो। फिर मुझे पूछा तुम कौन हो, तो मैंने कहा बाबा शांत स्वरूप आत्मा हो। कहा बस शांत स्वरूप आत्मा हो, प्रेम स्वरूप आत्मा हो। फिर मैंने कहा, बाबा ने कहा कौन हो, मैंने कहा शांत स्वरूप आत्मा हो, प्रेम स्वरूप आत्मा हो। कहा बस। अब बाबा का भाव यही था कि जो आत्मा के निज स्वरूप है, उस स्वरूप सर्व स्वरूपों सहित मैं कौन हूं ये स्मृति में रहना चाहिए। खाली आत्मा हूं इससे क्या हो जाएगा, ये भी आत्मा, मैं भी आत्मा, तुमने गुस्सा किया मैंने भी किया, हुई क्या बात, तू भी एक्टर मैं भी एक्टर, तू भी ब्राह्मण मैं भी ब्राह्मण, आ जाओ कुश्ती होती है, दोनों की क्या बात है, दोनों ही तो ब्राह्मण है, दोनों ही तो आत्मा है। लेकिन आत्मा नहीं है खाली, ये जो हम याद खाली कर लेते हम आत्मा हैं, इससे काम नहीं चलता है। तो बाबा हमको सिखाते थे आत्मा नहीं कहो बच्चे, मैं शांत स्वरूप, पवित्र स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति संपन्न आत्मा। अपने स्वमान को संपूर्ण रूपेण जानकर अपना परिचय अपने को आप दो और दूसरों को भी परिचय दो। और जब आपके सामने दूसरी आत्मा उस संपन्न स्वरूप से व्यवहार ना करेगी तो फौरन आपको आएगा कि इस आत्मा को अपने स्वरूप की विस्मृति हो गई है, आप अपनी स्मृति को और दृढ़ करेंगे। लेकिन आत्मा है, आत्मा है तो सब आत्मा है, और आत्मा है तो सेवा केंद्र में अगर किसी ने कुछ कह दिया तो दूसरा समझता है तुम कहने वाले कौन, आप भी समर्पित हो मैं भी समर्पित हूं, आपने भी ईश्वर को अपना बनाया मैंने भी ईश्वर को अपना बनाया, आप मुझे कैसे कुछ कह सकते हो, मैं भी तो कुछ कह सकता हूं। कई बार आपसी संस्कारों का टकराव आ जाता है। बाबा हमेशा कहते हैं, बच्चे मैं जो हूं, मैं जैसा हूं, मैं जिसका हूं और जहां का हूं, भूल न जाना। अगर दूसरा भूलता है तो आपकी स्मृति उस भूले हुए को भी स्मृति दिला दे, लेकिन विस्मृत ना हो जाना मैं कौन हूं, याद रखना। ठीक है, कई बार ऐसा भी बाबा कहते हैं, कई मेरी बच्चियां हैं इतनी होशियार नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे हैं कई बहुत होशियार हैं, ब्राह्मणी से भी ज्यादा होशियार, लेकिन फिर भी बाबा ने उसको ब्राह्मणी का दर्जा दिया है, अपनी गद्दी दी है, स्थान दिया है। मेरी योग्यता मेरी है, लेकिन जो पद है उस पद को सलामी जरूर होगी, उसका सत्कार करते हुए अपनी योग्यताओं से सहयोग दे सकते हैं, अपनी योग्यताओं से सेवाओं की वृद्धि हम कर सकते हैं, अपनी योग्यताओं को ईश्वर के कर्तव्य में लगाकर अपनी योग्यताओं को बढ़ा सकते हैं, लेकिन किसी की अयोग्यता को देखकर अपनी योग्यता का अभिमान नहीं कर सकते, क्योंकि अभिमान ही मनुष्य को गिराने का मूल साधन बनता है, चाहे वो उसकी तन की शक्ति है, चाहे उनकी योग्यताओं की शक्ति है, चाहे उनकी प्लानिंग शक्ति है, चाहे उनकी रूलिंग एडमिनिस्ट्रेशन शक्ति है, कोई भी शक्ति होगी। जिसको बाबा कह देते थे, बच्चे माताओं में एक अवगुण होता है मोह ममता का, और पुरुषों में अवगुण होता है क्रोध का, जोश आवेश का, वो जल्दी आ जाता है। लेकिन यहाँ तो माताएं और पुरुषों की बात नहीं है, यहाँ तो बाबा के डेडिकेटेड बच्चों की बात, इसलिए बहुत ध्यान रखने की बात है कि हम में किसी प्रकार का अगर कोई विकार की भावना आती है, कोई विकृत भावना आती है, क्योंकि हमारे पास सेवा केंद्र में रहने पर सजी सजाई कोई मूर्ति भी आएगी, कोई हाफ कपड़ों में भी आएगी, कोई आपके जीवन को अकसाने वाली आत्मा भी आएगी, कई प्रकार के दृश्य आएंगे, लेकिन वो सब दृश्य जैसा भी आए मेरे आंखों के सामने, वो जो दृश्य परिपूर्ण सर्वशक्तिवान का और मेरे स्वरूप का है, वो कभी जाए नहीं। जिसको बाबा ने कहा था कि श्री लक्ष्मी श्री नारायण आपका लक्ष्य है, ये शीशा लक्ष्मी नारायण का अपनी पॉकेट में सदा रखना, और फैशनेबल पॉकेट में या पर्स में शीशा रखते हैं और समय प्रति समय निकाल कर देखते रहते हैं। आप समय प्रति समय निकाल कर इस शीशे को देखो और देखो, वाह क्या मेरे में रूहानियत है, कितनी नैनों में चमक है, कितनी मुख पर पवित्रता की झलक है, कितना दिव्य मेरा स्वरूप है। ये शीशे में अगर शक्ल देखेंगे तो मुझे मेरी शक्ल ही तो दिखाई देगी, किसी और की थोड़ी दिखाई देगी। तो इस लक्ष्मी नारायण के चित्र रूपी शीशे में हम दिन में 8, 10, 12 बार जरा शक्ल तो देखें, वहां रे मेरे और वहां रे मैं, क्या हूं मैं। जहां कहीं जरा भी कमी कमजोरी आने लगे, फौरन शीशा निकाल के देखो, सब ठीक है, आंखें दिव्य हैं, मुख बोल दिव्य हैं, चेहरे में रूहानी झलक और छलक दिव्य है, मेरी ये शक्ल है। ये शक्ल नहीं, मूड ऑफ की शक्ल, जोश की शक्ल, वासना भोग की शक्ल, दृष्टि में अपवित्रता की शक्ल, वो मेरी शक्ल नहीं है, रावण की छाया आई है। और किसी पर कोई छाया आ जाए तो कहते हैं छाया पात्र दे दो, तेल लेने वो आता है, उसमें पैसा डाल के मुख देखते हैं, कहते जी छाया देख लेना, तो छाया उतर जाएगी छाया पात्र देने से। बाबा कहते ऐसे छाया नहीं उतरती। जब मेरी छत्र छाया में रहोगे तो जो छाया लगती है दिन प्रतिदिन वो छाया उतरेगी। इसलिए समर्पण आप सब जो आए, चाहे वो जिस भी प्रकार के समर्पण है, हमारा धन भी शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध का मतलब उसके पीछे भावनाएं शुद्ध होनी चाहिए। हमारा तन भी शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि हम परम पवित्र प्रभु की सेवा में आए हैं। एक भोग भी अर्पित करते हैं तो वस्त्र बदलते हैं, नहा धो के ठीक होते हैं। हम तो प्रभु के हर सेवा में, हर क्षण हर कर्म में हाथ देने वाले हैं। हमारा अंग अंग कितना पवित्र होना चाहिए। इसलिए मुझे ऐसा आ रहा था कि आज प्रभु हमसे कुछ नहीं मांगता, कहते तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत बर दे रे जुली। तेरे पास अगर कोई अपवित्र संकल्प है, वचन है, कर्म है, दृष्टि है, वृत्ति है, कृति है, कुछ भी है, तो मेरी झोली में डाल दे, मैं तेरे से और कुछ नहीं चाहता। हम अपने आप से पूछें, और ये कहने से डलेगा भी नहीं। कोई कहते ठीक है, इस बार हमने ये संकल्प किया कि हम अपनी दृष्टि वृत्ति को शुद्ध बनाएंगे। मैंने अपनी किसी क्लास में सुनाया भी था, ऐसे कहने से बनेंगे नहीं, संकल्प करने से सुधरेंगे नहीं। जब तक कि उसमें सुधार ना आ जाए, उसकी जगह भर ना ले। मान लीजिए मेरे मन में देहिक दृष्टि आती है, तो मैं आत्मिक दृष्टि का इतना अभ्यास करूं, किसी को भी देखूं, जिसको बाबा कहते हैं सांप को ना देखना, मणि को देखना, सांप विष देगा, मणि मुराद पूरी करेगा। अगर मैं अपनी वासना भोग की इस दृष्टि वृत्ति को खत्म करना है, तो मुझे हर एक में मणि को देखना है। और देखें, मणि की तरफ मेरा टेंशन गया या सांप की तरफ अटेंशन गया। सांप इतना बड़ा होता है, मणि तो इतनी सी होती है। बाबा भी कहते हैं ये देह भी क्या है, विष भरा ही तो है, वासना भोग का ही तो पुतला बना है, रचना तो उसी की है। इसलिए तुम इस रचना को देखते हुए भी इसको ना देखना। इस रचना में जिसको मैंने देखा, जो मुझे प्यारा लगा, वो इसके अंदर मणि प्यारी लगी, और जिसको मैं प्यार करता हूं, तू भी उसी को प्यार करना। वो कैसा भी है, क्या भी है, उसका कर्म वो जाने, उसके कर्म का खाता वो जाने। मुझे तो मणि को देखना है, लेकिन ख्याल रखना देखते हुए भी किसी मणि की तरफ अट्रैक्ट ना हो जाए। सभी मणियां और हर मणियां एक बराबर परम पवित्र परम शुद्ध है। ये मणि ज्यादा शुद्ध है, ये अशुद्ध है, नहीं, सभी मणियां परम शुद्ध है। हमारी दृष्टि जितना जितना बैठे हैं, कभी हम हॉस्पिटल में चल पड़े मन से, बाबा से शक्ति ली है, एक एक मरीज को हम दृष्टि दे रहे हैं। वो जो बाबा मेरे नैनों में बसा हुआ है, और मेरे नैनों में बस वो सबको नैन से निहाल कर रहा है, और ये नैन वो यूज कर रहा है। मैं इस नैनों से आज हॉस्पिटल में दृष्टि देकर आया, कल किसी जेल में चला गया, परसों कहीं साधु संतों के मंडल में पहुंच गया, परले दिन कहीं गवर्नमेंट के किसी विशेष कारोबार के प्राणी एकत्रित हैं उनके पास पहुंच गया। मन ही मन दे दो दृष्टि, उनको निहाल करो, तब ये दृष्टि हमारी थोड़ी परिवर्तित होगी। नहीं तो ये दृष्टि छोटी छोटी बातों में आकर के आकर्षित हो जाती है, और जो उसमें सिविलपन होना चाहिए, पूर्ण पवित्रता होनी चाहिए, उसमें पवित्रता की कमी आ जाती है। और पवित्रता की कमी के कारण ना तो योग लग पाता है, क्योंकि परम पवित्र से संबंध जुटना तब है जब हम पवित्र स्वरूप बनते हैं। बिना पवित्र स्वरूप बने योग कैसे लगेगा। बाबा कहते थोड़े समय के लिए देह से निकल, और जैसे आत्मा बैठी है और प्यारे बाबा सन्मुख हैं, मैं आत्मा बाबा से सर्व शक्तियां ले रही हूं। न केवल मैं ले रही हूं, लेकिन जो शक्तियां बाबा मुझे दे रहा है वो सर्व शक्तियों को निहाल कर रहे हैं ये नैन। जब तक इन नैनों से सेवा नहीं की जाएगी, ये नैन शुद्ध बनेंगे कैसे? ये मुख शुद्ध कैसे बनेगा जब तक इस मुख से प्रभु के महावाक्य, जो बाबा के बोल हैं, वो मैंने बोल से सेवा नहीं की? ये हस्त कैसे शुद्ध बनेंगे जब तक मैंने बाबा के हर प्रकार की करुणा सेवा में हाथ नहीं डाला? कैसी भी सेवा, तन से, मन से, वचन से, कर्म से, हर रूप से हमारा प्रत्येक अंग अंग सेवा में लग जाए। तो मुझे ऐसा विचार चल रहा था कि सेवा केंद्र में रहने वाले या सरेंडर कहलाने वाले, उनके ऊपर सबकी दृष्टि होगी, सभी की। और क्या दृष्टि होती है? बहुत सत्कार की दृष्टि भी होती है और छोटी छोटी कमियों को भी उनकी देखने की दृष्टि होती है, क्योंकि वो हम सबको संपूर्ण की निगाह से देखते हैं कि ये तो भगवान के स्पेशल बच्चे हैं, जो भगवान के घर में रहे या उसकी सेवाओं में, जिनको ईश्वर ने हर कार्य में उनको अपना बनाया हुआ है, ये उनके बच्चे। बड़ी सद्भावना से कई कुछ तन से, धन से सब लाते हैं ताकि बाबा के ये समर्पित ब्राह्मणों के मुख में कुछ चला जाए। सोचिए कितनी उनकी दृष्टि हमारे लिए ऊंची है और हमारी स्थिति इतनी ऊंची है कि उनकी दृष्टि के अनुकूल उनको हमारी स्थिति वरदान दे दे। वो वरदान मैं और आप नहीं दे सकते, वो दाता ही वरदाता उनको वरदान देगा। इतनी हमारी स्थिति श्रेष्ठ बनाने का ये समय है, इसलिए बाबा रोज कहता है अभी तो व्यस्त संकल्प भी नहीं आने चाहिए। विकल्पों की तो बात ही छोड़ दीजिए, व्यर्थ संकल्प भी नहीं आने चाहिए। और अगर विकल्प भी आते हैं तो आप समझ सकते हैं कि हमारे पुरुषार्थ की स्टेज कहां तक पहुंची। बाबा ने परसों की वाणी में, कल की वाणी में सुनाया था कि वो तमो प्रधानता से तमो तक पहुंचे। प्रधानता नहीं रही अब परिपूर्ण रूपेण, लेकिन तमो अभी भी है। सतो, सतो सामान्य अथवा रजो, ये तो दूर की बात। तो हम सब अपने आप को आपे ही चेक करें और अपने परिवर्तन का स्वयं दृढ़ संकल्प लें। ये तो परिवर्तन के आपके जो लिखत कही दादी जी ने वो लिखवा ली, लेकिन परिवर्तन हृदय से होता है और दृढ़ता से होता है। जब आ गए प्रभु के, बन गए, अब हम मरने से क्यों डरे? क्यों डरे मरने से? मर जीवा, जीवन हमको मिल गया, अभी भी हम जीवन को लेकर भी मरे नहीं तो क्या होगा? तो हम अपने से पूछे, हम मर गए? किसी को जिंदा तो नहीं देखते, सब मरे ही मरे हैं, एक भी जिंदा नहीं है। तभी बाबा कहते हैं मैं आया कहां हूं, कब्रस्तान में आया हूं, सब कब्रें हैं। और कब्रस्तान में अगर मुर्दा पड़ा है और मुर्दे के ऊपर बढ़िया सा कपड़ा पड़ा है, फर्स्ट क्लास चीजें हैं, तो हमको अट्रैक्ट करेंगे, वहां बहुत सुंदर है ये तो कपड़ा, शॉल देखो कितनी बढ़िया है, साड़ी बड़ी सुंदर, मुर्दे के ऊपर पड़ी है, कफन को देखने वाला देखेगा मुझे क्या मुसीबत पड़ी। हम कफन पर लिपटे हुए उस सामान को भी कई बार अट्रैक्ट हो जाते हैं। इकट्ठे रहते हैं, मान लीजिए बहने भी है, भाई भी एक सेंटर में रहते हैं, अब बहने चल रही है, सिर धोया है, बाल खुले हैं, ठीक से चल रही है, वाह सब दिखाई देता है, अच्छा लगता है, कहते अच्छा लगता है। बाबा कहते ये भी एक प्रकार की विकृति और विकार, अरे मुर्दा ही तो है, चल रहा है तो क्या हुआ? देह देह ना दिखाई दे, ये केवल वस्त्र है और कुछ नहीं है, नाश्वान है। इतनी हमारी दृष्टि वृत्ति, हम ये कहें कि दूसरे थोड़ा अपने को सावधान रखें तो हमारी दृष्टि अच्छी रह सकती है, ये राइट है, सहयोग दोनों तरफ का चाहिए। लेकिन अगर सहयोग ना मिले दूसरी तरफ से तो हम अपनी स्थिति को श्रेष्ठ रंग बना दें। गायन हमारा शास्त्रों में यही कि किस प्रकार वो मदरसा माँ थी उसके बच्चों का गायन या कईयों का गायन आता है, जो सबके नाम मुझे नहीं अभी ख्याल में है, कि ऐसे ऐसे सामने दृश्य उनके थे, लेकिन उनका जीवन क्या जीवन था, उन्हीं का तो गायन हुआ है। तो हमको ऐसा प्रभु के गायन योग्य पुत्र बनकर हम दिखाएं। और वो कुछ नहीं, मेहनत कुछ नहीं है, खाली सत्य के संग का रंग लगे। शायद मैंने सुनाया था, सबसे बड़ा संग हमको मिला हुआ है ये देह, हर समय इसके संग में है, ये हमको अपना रंग लगाता है और औरों के रंग में भी फंसाता है। इसलिए बाबा कहते हैं इस देह को देह ना समझो बच्चे, ये तो तेरे ऑर्गन्स है, तुझे काम करने के लिए साधन मिले हैं, ये देह नहीं है तेरी। एक एक अंग तेरा कर्म इंद्रिय तेरी काम करने की है, इसको ठीक से संजो के रख। लेकिन मैं शरीर हूं, इसको सजाना दजाना, इसको ठीक है, कोई भी इंद्रिय है, कोई भी कर्मचारी मानो, कोई भी जिससे मैं साधन लेती हूँ, बंदूक है उसको निश्चित स्थल पर बना के रखती हूँ, उसके लिए कैसा कवर चाहिए। अगर तलवार है उसके लिए कैसा कवर चाहिए, अगर तीरक मान है तो उसके लिए कैसा कवर चाहिए। वेराइटी कवर है, क्योंकि ये सब मेरे ऑर्नामेंट साधन है, इंस्ट्रूमेंट्स है। तो ये शरीर भी तो इंस्ट्रूमेंट है ना, ऐसा इसको देखते हुए देह नहीं। बाबा ने बहुत सुंदर कहा, मेरी तो देह नहीं है, लेकिन तुम्हारे भी तो ये कर्म इंद्रियां कर्म करने के ऑर्गन ही तो हैं। अगर मेरी देह नहीं तो तुम भी तो देह नहीं, तुम्हारे भी तो ये ऑर्गन्स हैं। तो हम कितना इनको ऑर्गन्स समझ कर चलते हैं। इसलिए ज्ञान का थोड़ा मनन चलता रहे, चिंतन चलता रहे, जो बाबा ने सुनाया वो हमारी बुद्धि में घूमता रहे। और जो देही अभिमानी स्थिति है, चलते फिरते भी जैसे मैं स्वयं स्वयं को देख रहा हूँ, ये मैं हूँ और ये मेरा निज का स्वरूप है, अलग होकर मैं इसको देखता हूँ, किसी को भी देखूं तो उससे अलग उसको देखता हूँ। तो अलग होने पर जब आत्मा निकल जाएगी, अलग देह होगी तो मुर्दा ही होगा ना। आत्मा अलग आपने देखी तो शरीर देखा तो मुर्दा देखा, मुर्दे को थोड़ी कोई प्यार करता है, अट्रैक्ट होता है, खींचता है। तो हमारी स्थिति बाबा कहते हैं ऐसी हो। ये बाबा हम बच्चों को पाठ पढ़ाता था साकार में, बहुत याद दिलाता था, बच्चे कौन हो, बच्चे तुम कौन हो। और हम कह देते थे हम आत्मा। हमको एक बार बाबा ने कहा, बच्चे तुम कितनी देर अपने को आत्मा समझती हो। बिल्कुल मैं नहीं थी, थोड़े समय ज्ञान में चली थी। तो मैंने कहा बाबा सारा दिन मैं अपने को आत्मा ही समझती हूँ, समझ तो मिल गई कि हम आत्मा हैं। तब बाबा ने मुझे कहा कल बाबा को आकर बताना कितनी देर समझा। तो मुझे बाबा ने काम दिया कि जब स्नान पर जाना बाल्टी भरना, लेकिन ऑर्डर देना हाथों को, उठा के चलो अंदर बाल्टी रखो। जब स्नान शुरू करना तो इस गाड़ी को नहलाना, बाबा करता था, कहता था आज तो शिव बाबा ने लोटियों पर लोटियां डाल दी, इस पर खूब लोटियां डाली बच्चे, बाबा ने इस पर लोटी डाली। मैंने कहा बाबा मैं तेरे पर भक्ति में बहुत लोटियां डाली। वो कहते आज तेरे ऊपर मैं सारी लोटियां डालता हूँ, आज खूब लोटियां डाल डाल के मेरा पूजन किया। कई भी किस रूप से, कभी किस रूप से बाबा अपना अनुभव सुनाते थे। तो हमको जब बाबा ने कहा नहाना, तो जैसे शरीर रूपी गाड़ी को साफ करना है, बाल्टी ले जाना तो हाथों को ऑर्डर देना लेकर चलो और बाल्टी रखना, ऐसे दो तीन बातें सुना दी। तो मैंने देखा दूसरे दिन बाबा की बात याद रही, बाल्टी भरनी रखी याद आया, ऑर्गन्स को ऑर्डर देना उठाना, एक सेकंड का वो याद हुआ, फिर काम खत्म हो चुका था। फिर एक लोटी डाली, बाबा मेरे ऊपर भी लोटी डाल रहा है क्योंकि मैंने भी तो भक्ति में लोटियां डाली हैं, और दूसरे सेकंड सब खत्म हुआ। बहुत बातों में देखा नहीं याद रहा, और मुझे ये आया कि मैं बाबा को अब क्या कहूंगी। बाबा ने मुझे पूछा कितनी देर आत्मा समझती हो, तो मैंने ये कहा कि बाबा मैं सारा दिन आत्मा समझती हूँ। और अगर अब मुझे बाबा पूछेगा तो मैं क्या कहूंगी, बहुत संकोच आया। क्लास पूरी हो गई, मुझे लगा जान छूटी, बाबा ने पूछा नहीं, बच गई मैं तो आज। ऐसे ही बाबा खड़े थे आंगन में, साकार बाबा खड़े हैं, और बाबा ने ऐसे, मैं दूर थी तो बाबा ने मुझे बुलाया, तो मैं गई। बाबा कहते बच्ची कितनी देर अपने को आत्मा समझा, मैं तो पकड़ी गई, जो काम दिया था वो बाबा ने पूछ लिया। तो मैंने कहा बाबा बहुत कम समय, बहुत कम समय। तब बाबा ने कहा बच्चे ये लगातार अभ्यास की आवश्यकता है, जब तक लगातार अभ्यास नहीं होगा, अटेंशन नहीं बनी रहेगी, तब तक देह से आत्मा न्यारी हो, कर्म इंद्रियों की राजा बन, कर्म इंद्रियों पर शासन करे, ये नहीं हो पाएगा। इसलिए बाबा रोज रोज बच्चों को कहता है बच्चे तो आत्मा है। तो बाबा हमको अभ्यास सिखाते हैं, लेकिन हम समझते हैं ठीक है बाबा के घर आ गए, अब तो भगवान के बन गए, भगवान हमारा, हम भगवान के। भगवान ने ब्रह्मा बाबा को बता दिया कि तू नारायण बनने वाला है, और फिक्स कर दिया कि तू ही नारायण बनेगा। लेकिन बाबा को उसी क्षण से ये पुरुषार्थ की चिंता लग गई कि मुझे तो नारायण बनना है, मुझे तो नारायण बनना है, मुझे तो नंबर वन पुरुषार्थ करना है, मेरी तो एक एक कर्म इंद्री मेरे कंट्रोल में चाहिए, एक एक नैन मेरा निहाल करने वाला होना चाहिए। बाबा ने क्या पुरुषार्थ किया। आज हमको बाबा कहते हैं हाँ बच्चे तुम तो बाबा के दिल में समाये हो, हम कहते समा गए, काम पूरा हुआ, तुम मेरे नैनों के तारे हो। भगवान ने मुझे ये कहा, अब मुझे क्या करूं जो मैं उसके नैनों में समाया ही रहूं, उसके सिर के ताज की मणि बनकर ही रहूं, मुझे पुरुषार्थ की चिंता चाहिए। अब चिंतन का समय नहीं है, चिंता कर। चिंता का मतलब ये नहीं घुन की तरह लग जाए, चिंता का मतलब ये कार्य मुझे करना ही है, दृढ़ता चाहिए, तब ये जो हमारी कमियां हैं वो छूटती हैं। और हम कर्म करें, ऐसा नहीं सेवा नहीं करनी, हम योग का अभ्यास करते हुए कमरे में बैठे हुए हैं कि अब तो हम अपनी स्थिति बनाएंगे, स्थिति भी बनानी है लेकिन सेवा के साथ साथ स्थिति बनानी। बाबा कहते सेवा छोड़कर स्थिति बनाएंगे तो स्थिति नहीं बन पाएगी, सेवा में ही स्थिति बनेगी। तो ये मुझे जो मन में विचार आए, मैं विचार करके नहीं आई, सोचा तो था मुझे आप सबसे सब कुछ पूछना है, लेकिन मैं नहीं, कुछ मन में विचार आए तो मैंने थोड़े से विचार सुना दिए। बाकी आप सबके मन में कोई बात आए तो पूछ सकते हैं, कोई भी बात है मन में, क्योंकि कई बातें मन में चलती हैं और जो हमारे पुरुषार्थ के अंदर रुकावट बनती है। कही है जी, रहम कैसे करना, क्योंकि कई बार रहम आता है लेकिन रहम के साथ मन द्रवित हो जाता है, पिघल जाता है। वो जो मन पिघल जाता है हमारा, तो कभी कभी दुखी को देखकर थोड़ा दुख की लैस आ जाती है, किसी आवश्यकता के मनुष्य कमी में चल रहा है तो उसकी कमजोरी मेरे मन को बड़ा कमजोर कर देती है। रहम का मतलब इतनी अंदर शक्तिशाली स्थिति हो कि उस आत्मा पर रहम करना है, मुझे रहम है तो जो शक्तियां बाबा ने मुझे दी हैं उन शक्तियों का सहयोग देना। मान लीजिए किसी का कोई निकट का संबंधी शरीर छोड़ गया है और वो आपके भी बहुत निकट का संबंध है, खूब रो रही हैं, आपको रहम आ रहा है बहुत, और आप अपने ज्ञान से आंसुओं को रोक रहे हो, लेकिन ऐसे टाइम पर हमारा रहम है कि हम इतनी शांति की शक्तिशाली स्थिति में आ जाएं कि उस आत्मा को शांति का सहयोग मिले, और वो ये कहे कि थोड़े दिन आप अगर और रह जाओ तो लगता है कि मुझे ये मदद मिलेगी। रोते को देखकर रोने वाले 10 आ जाएंगे, लेकिन रोते को शांत करने वाला कोई नहीं आएगा। कोई मनुष्य किसी कमजोरी के कारण दुखी है, उसके दुख को सुनकर दुखी हो जाना बड़ा इजी है, लेकिन दुखी के दुख की लहर को खत्म करने के लिए अपनी संतुष्टता की स्थिति और सहन की अवस्था इतनी मजबूत हो कि उसको अपने दुख को सामना या सहन करने की ताकत मिल जाए, ये रहम करना है। उसको उस समय वो साकार दे, सहयोग दे, तभी आप देखिए रोने वालों के क्लब नहीं बने, हंसने वालों के क्लब बने हुए। हंसना आता नहीं मनुष्य को, कैसे हंसे? कहते क्लब बनाओ और हंसना करो, हंसो जरा। रोतों के साथ रोने वाले बहुत निकल आएंगे, रोतों को हंसाने वाला कोई नहीं मिलेगा। और हम सब इंसान है, आकर अगर किसी के साथ बहुत घटना ऐसी घटित हो गई जो सचमुच उसको अब मुकाबला करना बड़ा मुश्किल है, ओवरलैप करके रो रहा है, बहुत दुखी है, और हम भी उसके दुख में दुखी तो हो जाएंगे क्योंकि रहम आता है अंदर, लेकिन उसके दुख को बांटना उसको उस समय अपनी स्थिति में इतनी शांति, इतनी शक्ति और इतनी पवित्रता धारण कर ले कि उस आत्मा को ये प्रतीत हो कि इनके आने से मुझे कुछ मिला है। ऐसी परिस्थिति का सामना, ऐसी परिस्थिति को पार करना, ऐसी परिस्थिति को सहन करना, ये मेरे को ताकत आ गई। ये है उसको रहम की भावना। रहम शक्ति से हो, कई बार रहम कमजोरी का होता है, वो रहम ना, वो बहुतों में आता है। कई बार कहते हैं भाई एक बहन है, दूसरी बहन के साथ रहती है, बहन जी उसका ध्यान नहीं रखती है, वो बीमार रहती है तो दवाई नहीं ला देती, बीमार है तो कुछ काम नहीं कर सकती, तब भी कहती है ये काम करो, हमको बड़ा रहम आता है। अब रहम आके हम क्या करते हैं? गलत काम भी करते हैं क्योंकि रहम आया हुआ है। अब रहम करने के कारण हम कहते हैं चलो ये थोड़ा पैसा रख लो, तो कह देना मेरी मम्मी ने मुझे दिया, बताना नहीं मम्मी ने दिया, मैं क्या करे, कोई नहीं देता तो मुझे तो देना ही पड़ेगा, मैं देखता हूं ना हर समय। हमें ऐसा रहम नहीं करना जो हमें किसी से अटैच कर दे। हाँ ठीक है, हम बड़ों से बात कर सकते हैं, हम अपने मन की बात कह सकते हैं, लेकिन हम ऐसा रहम ना कर दे जो किसी से हमारा संबंध नजदीक का ऐसा बन जाए कि वो मुझे अपना समझने लग जाए और मैं उसे अपना समझने लग जाऊं। धीरे धीरे ये स्टेजेस आ जाती, बहुत अटेंशन रखने की जरूरत है। भाई बहनों का इकट्ठा रहना सहज नहीं होता, लेकिन वो भाई और बहन की दृष्टि जो ब्रह्मा कुमारी और ब्रह्मा कुमार है, ये ब्रह्मा की मुख वंशावली है, अब मैं भी ब्रह्मा का मुख वंशावली हूं, ये हमारा अलौकिक रिश्ता है, ये हमारा लौकिक रिश्ता नहीं है। इतनी अलौकिकता हमें सबके प्रति आए। सेवा केंद्र में समर्पित होने वाला कहीं सेवा केंद्र के लिए बोझिल ना बन जाए। कई बार कई ऐसे उनके स्वभाव या संस्कार होते हैं कि सेवा केंद्र के वातावरण में कुछ भारीपन आता है, कह सकते नहीं है, कहेंगे तो बात और बिगड़ जाती है, लेकिन भारीपन रहता है। सेवा केंद्र में कोई भी आए उसको ऐसा लगे कि जैसे कोई धूप का सताया हुआ एसी के कमरे में गया, उसको राहत मिलती है, ऐसे प्यारे बाबा के घर के वातावरण को हम बनाकर रखें जो कोई भी आए इस कलयुगी तमोगुण की धूप से जला हुआ भी उसको लगे अरे शक्ति और शांति है तो यहाँ, यहाँ से हम कहीं जा नहीं सकते। बाबा यहाँ तक कहते थे आपकी दीवारों से भी योग के वाइब्रेशन आने चाहिए। इसलिए बाबा शुरू शुरू में जब पाकिस्तान हिंदुस्तान बन रहा था, पार्टीशन के झगड़े चल रहे थे, तो पहरे रखा हुआ था और बाबा कहते थे आप 10 के रात को पहरे के अंदर किसी व्यक्ति की, जो कि व्यक्ति ठीक नहीं, उसकी यहाँ पर हिम्मत ना हो कि वो कदम बढ़ा के अंदर आ सके, तुम्हारी ऐसी मनोस्थिति का पहरा हो कि तुम्हारी दीवारों में भी वो आकर्षण, और अगर किसी के पहरे में कुछ थोड़ी सी खराबी होती थी तो बाबा कहता था ये पहरा देने वाली आत्मा शक्तिशाली नहीं है। इतनी वातावरण में इतनी प्यूरिटी और इतनी वातावरण में श्रेष्ठता, ये मनोस्थिति की बात। इतनी पावरफुल मनोस्थिति बन जाए, छोटी छोटी बातों में घबरा जाए, बहसम बहस कर ले, इसने क्रोध किया मैंने भी किया, इनको ये मालूम है मुझे भी मालूम है, छोटी सी चीज नहीं मिली चलो नहीं मिली तो ठीक है हम कहीं से मांग लेते हैं, हम भी किसी को इशारा दे देते हैं, हम भिखारी नहीं हैं, हम त्याग मूर्ति, हम त्याग करने के लिए आए हैं, त्याग ही मेरा भाग्य। आज मैंने देखा कई बार ऐसा सेवा केंद्र में रहते हैं लेकिन कोई ना कोई समझते हैं हमको पूरा मिलता नहीं जितना मिलना चाहिए। तो जितना मिलना चाहिए, आपकी डिमांड्स बहुत ज्यादा है, सेवा केंद्र इतनी डिमांड नहीं पूरी कर सकता। वो कहते ठीक है हम कोई धंधा करके अपनी डिमांड पूरी कर लेते हैं। हम त्याग करें, त्याग की भावनाओं को बढ़ाएं, ये नहीं हम कोई धंधा करके कमाई करके पैसा बढ़ा लेते हैं, ऐसी क्या बात। और कोई पूछेगा तो कहेंगे कुछ भी नहीं, हमें कोई कमाई नहीं है, जब आप नहीं देते तो कहीं पर लेंगे, इसलिए हम अपना कमाते अपने पॉकेट में डालते हैं, आपसे थोड़ी लेते हैं। कई प्रकार के संकल्प आ सकते हैं, हमें अपनी स्थिति को बड़ा शक्तिशाली मजबूत। हम कुछ भी यज्ञ में करें ये ना समझे मैंने दिया इनको दिया, मैंने यज्ञ में डाला प्रभु के यज्ञ में डाला, इनके पास बहुत है मैं और क्यों दूं, तो कहां दूंगा, भिखारियों में, गरीबों में, यतीम खानों में बांटूंगा। मुझे तो मेरे बाबा ने कह दिया मैं डायरेक्ट आया हूं तो सफर कर ले, मैं तो अपना सफर कर रहा हूं, कौन क्या करता है ये उनकी जिम्मेवारी, उनका पाप पुण्य है, मेरे अंदर श्रद्धा भावना क्यों कम हो जाए। और कुछ बात पूछनी है किसी ने जी? जी मानो किसी प्रकार की भी अगर जल्दी फीलिंग आती है तो होता तो देह अभिमान है कि मैं भी तो समझदार हूं, कोई बुद्धू तो नहीं, भूल मेरे से हुई भूल औरों से भी तो होती है। हम कंपेयर करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं किसी को, किसी के द्वारा हम कोई अप्रिसिएशन लेना चाहते हैं, महिमा लेना चाहते हैं, क्योंकि अगर फीलिंग है तो बाबा ने कहा हुआ फीलिंग फ्लू की बीमारी है, तो जो ही फीलिंग आने लगे समझो आज तो फ्लू हो चला है, इसका डॉक्टर तो सिवाय एक सर्जन के और कोई है नहीं, कौन अपने में बीमारी बुलाएगा। किसी को फ्लू हो कहते जरा थोड़ा बच के रहना इनको फ्लू है, फ्लू इन्फेक्शियस डिजीज होती है। तो अब जो ही देखें किसी का बोल मेरी फीलिंग दिला रहा है तो इसका मतलब ये इन्फेक्शन आ रहा है, थोड़ा मैं बच जाऊं। किसी के बोल का, किसी के व्यवहार का, किसी की कर्म करने का आपको प्रभाव पड़ जाता है, तो आप समझो कि मेरा कमजोरी है अंदर, जल्दी से मैं किसी का इन्फेक्शन कैच कर जाता हूं। इसलिए अपने समय थोड़ा निकाल कर एकांत में बैठ के इतना योग शक्ति अपने में भरो जो आपके अंदर जल्दी से किसी छोटी सी बीमारी को कैच करने की जो कमजोरी आ चुकी है वो समाप्त हो जाए। और जिस समय फीलिंग आए फौरन आए अरे फ्लू की बीमारी आ गई मैं इनसे बीमार हो जाऊंगा, वहां छींक मारते हैं, जिस्म में दर्द होता है, बुखार होता है, यहाँ कोई बोल देता है, कोई शब्द कह देता है, कोई इशारा कर देता है, ये भी तो आप अपनी बीमारी को तो आपको ही ठीक करना पड़ेगा। बीमार रहना तो ठीक नहीं है, रोज रोज किसी को फ्लू होता रहे तो कमजोर बहुत हो जाता है, उसका पित्ता जिगर वगैरह सब कमजोर हो जाता है, कुछ हजम नहीं कर सकता है, रिक्शा लेता है लेकिन आप कोई बात देखिए बैठो। मान लीजिए कई ऐसे हैं कि हम उनको कोशिश करते हैं किसी तरह भी ये हमसे संतुष्ट रहे लेकिन वो संतुष्ट होते ही नहीं है। अब कहते हम क्या करें, हम अपनी तरफ से जो संतुष्ट जिस प्रकार कर सकते हम करते रहे लेकिन हम कई बार संतुष्ट करके उनसे रिस्पांस चाहते हैं कि अब ये कहें कि मैं संतुष्ट हो गया, उसका पेट भरा नहीं, आपके ऊपर कोई जन्मों के कर्जे हैं, आपने कर्जा थोड़ा तो चुका दिया लेकिन अभी जो बाकी रह गया हुआ है कर्जा वो लेके आपको धन्यवाद नहीं करता, वो ये कहता है देखना जल्दी जल्दी बाकी देना, लेट नहीं करना। आप कहते एक तो मैंने पैसा दिया, खाने को मेरा अपना नहीं रहा, और फिर देखो क्या करके बोलता है। बोलेगा क्योंकि कर्जदार हो, आपने कर्जा चुकाना है। आपने 60 रुपए लिए, आपने 35 रुपए दे दिए, लेकिन वो जो आपके 25 रुपए हैं उसको लग रहा है कि बहुत रह गए। वो कहता है जल्दी बाकी देना। आप घूर के देखते हो, वो कहता है घूरता क्या है, आपको और गुस्सा आता है। नहीं, कर्जदार हैं, कोई बात नहीं है, मैंने जो भी कर्जे हैं यहां उतारने हैं, लेकिन लेना नहीं, मुझे और नहीं लेना और कर्जा बनाना नहीं, मैं अपने तरफ से संतुष्ट करता चाहूं। और अगर कभी कोई मौका है, अपने परिवार की बात है, तो हम कभी कह सकते हैं भाई जी या बहन जी कोई ऐसी बात हो तो मेरे को आप क्लियर बता दो, मैं वैसा करने की कोशिश पूरी करूं। कभी भी मेरी ऐसी बात देखो तो मुझे बता सकते हो। ऐसा मैं चाहता हूं मैं संतुष्ट करूं, लेकिन मैं नहीं कर पाता हूं तो मेरी जो कमी है वो मुझे अगर बताएंगे तो मैं ठीक करूंगा अपने आप। इतना निरहंकारी, ये नहीं आए मैं इनको संतुष्ट करता हूं, ये होते ही नहीं। हम चाहते हैं हम संतुष्ट करें या हाँ कह दें, ऐसे कहां है। सहज है संतुष्ट करना, नहीं सहज होता, टाइम लगता है इसमें बहुत, कर्जे वर्जे लेन देन सब उतर जाएंगे ना, फिर कहेंगे हाँ ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब कहेंगे अब इनको मैं अच्छा लग गया, अभी लगेंगे क्योंकि कर्जे सारे उतर गए। उतरने दीजिए, घबराओ नहीं, अपनी तरफ से श्रेष्ठ श्रेष्ठ कर दीजिए, बस वह क्या है कि कई बार कई लोग आते हैं तो कई लोग अच्छी बातें करते हैं, कई इधर उधर की बातें करते हैं, तो अगर आप पहले उनकी अच्छी बातें सुनी, फिर उनकी खराब बातें सुनी, फिर आप उनको कोर्स कराते हैं। अगर आपके पास वहां बड़ी बहन है, मुख्य बहन है, तो आप कह सकते हो कि आपको मैं यहां जो आए हो, जो आप ज्ञान यहां सुनना चाहते हो कहेगा हाँ, तो मैं आपको वो सुनाता हूँ। बाकी आपके मन में कोई ऐसी वैसी बात है तो मैं अपनी बहन जी से आपको समय ले दूंगा, ताकि आप बहन जी से अपने मन की सारी बात कर लें। हम इसमें टाइम ना गवाएं। कई बार हर बात में हम चले जाते हैं, उनकी कहानियां, राम कहानियां, घर की प्रस्तुतियां, ये वो सब सुनने में, तो जिससे बहनों को लगता है कि कोर्स करा रहे हैं या कथा सुन रहे हैं बैठ के। तो हम इन बातों में ज्यादा ना जाए, हमारे बड़े हैं, हम उनसे उनका परिचय भी कराएं, और ये काम उनका है, मुझे तो सेवा करने सौंपी गई है, मैं उनकी सेवा करूं, जिससे आपका माइंड क्लियर रहेगा। जो बाबा आपसे दिलाना चाहता है आप वो दे देंगे, नहीं तो आप उनकी बात के अनुकूल आप उनको देंगे, जो बाबा दिलाना चाहता है वो नहीं दे पाएंगे। इसलिए बड़ों पर ये काम रख दीजिए, इससे आप समझ लो कि बड़े इस बात को समझते हैं कि उनकी भी कुछ वैल्यू रखनी पड़ती है। अच्छा जी, पूरा हुआ, कुछ और कहना है बोलिए। एक सेकंड पहले ये बोलने थे, ये कहते हैं कि बाबा ने जैसे आज ही कहा कि जो बाबा से बिछड़े हुए बच्चे बहुत काल के थे, उनसे पहले पहले बाबा मिलता है। और फिर बाबा ये भी कहता है कि कई बच्चे जो लास्ट आएंगे वो भी फास्ट जाएंगे। तो ये दो बातें कंट्राडिक्टरी लगती हैं, ये दो बातें आपस में कैसे मिलान खाती, तो आप इसका उत्तर देंगे? कोई आपके पास है उत्तर? मैं तो दूंगी। है आपके पास उत्तर कि सभी का ये प्रश्न है? तो बाबा, हाँ किसी के पास हो तो बता दो। इनका ये कहना है कि बहुत काल से बिछड़े मानो जिन्होंने शुरू से भक्ति की, वे मैं आपको सुना देती हूँ। जैसे इन्होंने प्रश्न किया, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं कि जो शुरू में बाबा ने स्थापना की और सेवाएं प्रारंभ की, उस समय वो बच्चे बाबा के उस कर्तव्य में शामिल हो गए, और उस समय कोई कंडीशन नहीं थी। जो आ गए उनसे पूछो आपको किस चीज ने अट्रैक्ट किया, तो उनका एक ही शब्द है कि भगवान आ गया। आपको कैसे पता चला कि भगवान आ गया? कहते इसमें पता की तो बात ही नहीं, आ गया भगवान, कोई रीजन नहीं है, कुछ नहीं है, आ गया भगवान। अरे घर परिवार छोड़कर आप भागते चले आ रहे हो, आपके बच्चों का आपके घर का तो छोड़ा, लेकिन आपका भविष्य क्या होगा? कुछ नहीं भविष्य क्या होगा, हम तो स्वर्ग में जा रहे हैं बस। ऐसे निश्चय की वो स्थिति थी, वो निश्चय के आधार से इस यज्ञ के फाउंडेशन बने, नींव बने, जिन पर इस यज्ञ की सारी इमारत खड़ी हुई। वो थोड़े थे और वो गुप्त रहे, वो थोड़े रहे, थोड़े से प्रत्यक्ष दादियों के रूप में हमारे सामने आए, बाकी थे तो बहुत लेकिन गुप्त रह गए। परंतु जो लास्ट में आते हैं, कई बच्चे ज्ञान में लास्ट में आए लेकिन उनकी जो योग्यता थी वो वर्तमान के लोगों को संदेश देने के लिए उनकी योग्यताओं की बहुत आवश्यकता थी। जो वर्तमान का समय था उस समय के अनुसार ऐसे बच्चों का निकलना भी बहुत जरूरी था जो बाबा के कार्य को संपन्न करे, संपूर्ण आहुति देने वाली वो आत्माएं भी चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं मैं पहले मिलता हूँ, वो फाउंडेशन की आत्माएं होंगी जरूर है, लेकिन जो पीछे मिलता हूँ वो पीछे आते हैं, लेकिन इस कदर सेवा में, इस कदर ज्ञान का स्पष्टीकरण मिल जाने में, इस कदर परिवार की वैल्यू को जान जाने में इतने परफेक्ट होते हैं कि उनको टाइम नहीं लगता आगे बढ़ने में। तो ऐसे बच्चे भी बहुत उच्च पद के अधिकारी बन जाते हैं। हाँ, फाउंडेशन अलग होती है, फिर ऊंचे पद के अधिकारी बनने वाले बहुत से बच्चे होते हैं। आज हम देखते हैं जब विदेशों में जाते हैं, इतनी सेवाएं बाबा के वो बच्चे करते हैं, यहाँ के स्थान देखिए और वहां के स्थान देखिए, तो ऐसा लगता है लास्ट सो फास्ट। मानो ऐसा नहीं बाबा ने कहा लास्ट सो फास्ट, जो पहले वाले बच्चे हैं ये उनको भी मात कर देंगे। वो पहले तो नींव हो गई, पीछे वाले बच्चे फास्ट पुरुषार्थ से ऊंचा पद प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो ऊंचा पद प्राप्त नहीं कर सकते। ये बाबा पीछे आने वालों को सत्यता का प्रोत्साहन देते हैं। ये मतलब नहीं है कि जो पहले आए बाबा उनको पहले मिल गया और जो पीछे आए उनको बाबा पीछे मिला, या साकार नहीं मिला अव्यक्त मिला, नहीं, पुरुषार्थ की बात। उन्होंने साकार के होते भी जो बच्चे आए उन्होंने इतना पुरुषार्थ नहीं किया, साथ रहे, घर के अंदर रहे, तब भी उन्होंने नहीं पहचाना। और जो लास्ट में आए बच्चे उन्होंने ज्ञान से इतनी अच्छी तरह समझकर बाबा का नाम इतना सुंदर बाला किया कि कमाल कर दी उन्होंने, तो वो भी अपने पुरुषार्थ में फास्ट जाके ऊंचे पद के अधिकारी बन सकते हैं। ये बात इसमें मिलना तो दोनों को ही है, लेकिन वो फास्ट पुरुषार्थ में उच्च पद के अधिकारी, वो फास्ट पुरुषार्थ में नहीं लेकिन वो नींव की आत्माएं बन जाती जिनको पहले बाबा मिल जाते। वो सारे ऊंचे पद के अधिकारी नहीं होते, ऊंचे पद अधिकारी तो पीछे वाले भी हो सकते, वो जरूरी नहीं। अभी कभी लास्ट करना है ना, क्योंकि आप सब कहेंगे आज की दीदी ने हमको बिठा रखा है। मैं चाहती हूँ आप भले घूमो फिरो, लेकिन मुझे ऐसा लगा आप सब इधर उधर रहेंगे, क्यों नहीं इकट्ठे होके यहीं बैठ जाएंगे। जी आगे आ जाओ, कुछ अभी करेंगे तो ड्रामा में ऐड हो जाता है, वो जो ड्रामा होगा वही ऐड होगा। अभी आप खड़े हुए ड्रामा में ऐड हो गया, खड़े हुए थे, अब कल बार फिर ऐसे ही खड़े होंगे आप, ऐड हो गया ना, ऐसा ऐड हो जाता। अब आपको हुआ था आप खड़े हुए थे ये तो याद नहीं, ऐड तो वह याद है ना अभी, और ये भी मुझे भी मालूम है ऐड हो गया, ऐसा ऐड का मतलब होता है। नहीं, ये समझते हैं कि जो सेवा केंद्र में रहते हैं और जो सर्विस करते हैं, क्या वो कुमार भी सेवा में तीक्ष्ण हो सकते हैं? सेवा में तीक्ष्ण जरूरी नहीं कि खाली सरेंडर वाले ही हो सकते हैं। सेवा में तीक्ष्ण, पुरुषार्थ में तीव्रता, परिवर्तन जीवन का जितना जिसका होगा पद उसने ऊंचा पाना है। कोई जरूरी नहीं जो आ गए बाबा के घर में वो तो ऊंचे पद के अधिकारी हैं, और जो किसी कारण से सेवा में अपनी लौकिक कार्य अर्थ व्यस्तता में होते हुए भी लेकिन अपने पुरुषार्थ में बहुत सुंदर चल रहे हैं, वो घर रहने वालों से भी ऊंचे पद के अधिकारी बन सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ तो है ही पुरुषार्थ पर आधार। आगे घर में तो आने पर हम अगर यज्ञ में कुछ करते हैं तो यज्ञ का खाते भी तो हैं, यज्ञ की पालना लेते भी तो हैं, यज्ञ का ऊपर हमारे ऊपर बोझ भी तो है। इतना हम उतारने के लिए क्या कर रहे हैं, रात दिन करें तब भी कम है, क्योंकि दाता ने इतनी श्रेष्ठ पालना अपने बच्चों को देता है, हम बच्चे उसके लिए क्या करते हैं। और जो लेते कम है देते ही देते हैं तो उनका बहुत जमा होता चला जाता है, काफी आगे जा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। चलो अभी बाबा को याद करते हैं, दो मिनट याद में बैठ के।
बाबा ने दिया Okay।